कीर्तन में भी वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे धन। समय सार परमागम का निजराधिकार है। इसकी गाथा नंबर 206 पर चर्चा की थी और उसके बाद में जो कलश आया है उस कलश पर अपन ने चर्चा की थी। उस कलश के संदर्भ में कविवर बनारसी दास जी ने अनेक छंद लिखे हैं। दो छंद अत्यंत मार्मिक हैं जिनका उल्लेख अपन ने यहां किया है, अभी अपन उन पर चर्चा करेंगे। शायद ये लोग आप लोग जानते कि नहीं जानते, लेकिन पंडित बनारसी दास जी ने समय सार का अध्ययन पांडे राजमल जी की कलश टीका के आधार पर किया था। जिस कलश टीका की चर्चा अभी गुरुदेव श्री अपने प्रवचन में कर रहे थे, गुरुदेव श्री के लिए वो बहुत प्यारी थी। 400 बरस पहले लिखी गई वो टीका उस समय की है जब हिंदी साहित्य में गद्य पैदा ही नहीं हुआ था, गद्य का जन्म नहीं हुआ था। जो कुछ होता था साहित्य पद्य के रूप में ही मौजूद था। जब हिंदी के गद्य साहित्य का इतिहास देखते हैं तो गद्य के नाम पर वे चिट्ठियां मिलती हैं जो व्यापारी लोग किसानों को पैसा देते थे कर्ज में और उनसे लिखा लेते थे दो लाइनें, वे चिट्ठियां मिलती हैं। तो वो गद्य था, समझ लो, बाकी सब बात पद्य में। उस समय पांडे राजमल जी ने हिंदी का गद्य लिखा, इसलिए हिंदी गद्य साहित्य अकेले जैनियों के नहीं, पूरे हिंदी साहित्य जैन अजैनों का, सबका, हिंदू मुसलमानों का, उसके ये फाउंडर हैं पांडे राजमल जी। अब उनकी भाषा बड़ी विचित्र है, ये तो पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री ने उसे बहुत सीधी की है, फिर भी कितनी टेढ़ी है मैं थोड़ी पढ़ के नमूना के तौर पर आपको बताता हूं। उसमें वो मार्मिक बातें हैं जिनका उल्लेख कविवर बनारसी दास जी ने अपने छंदों में किया है। बात चल रही है कि परिग्रह नहीं है उनको, परिग्रह की उनको इच्छा नहीं है, पर के ग्रहण करने की उनको कोई इच्छा नहीं है। तो अपन परिग्रह के नाम पर रुपया पैसा स्त्री पुत्र मकान ये समझते हैं, और फिर अंतरंग परिग्रह पर जाते हैं तो मोह राग द्वेष कषाय भाव समझते हैं। लेकिन यहां पर जिस जो चर्चा है इनमें ये दोनों ही बातें नहीं है। देखो, शुद्ध स्वरूप का अनुभव उससे बाह्य है जितने विकल्प। ये भाषा देखो क्या समझना है, शुद्ध स्वरूप का अनुभव उससे बाह्य है जितने विकल्प विवरण। वाक्य खत्म हो गया, कोई समझ में आया। अब विवरण मैंने उसी को विस्तार से कहते हैं, क्या विवरण है उनका, शुभ अशुभ क्रियारूप अथवा रागादि विकल्प रूप अथवा द्रव्यों के भेद विचार रूप, ऐसे जो अनेक विकल्प उनका समाधान रूप से प्रतिपालन अथवा आचरण अथवा स्मरण, उसके द्वारा कौन कार्य सिद्धि। मैंने ये परिद्रव्य है, इनका परिग्रह है और इनसे क्या कार्य की सिद्धि होने जाने वाली है। संत कुमार जी कैसी भाषा है, देखो, अपितु कोई कार्य सिद्धि नहीं, इस बात को निश्चय जानना धोखा कुछ नहीं है। उस वक्त ऐसे लोग रहे होंगे कहते होंगे वो इधर धोखे में डाल रहे अपन को, सारे धर्म को अधर्म कह रहे। क्यों, जो हमारी सारी क्रियाएं हैं वो उससे आत्मा का अनुभव धर्म नहीं होगा, जो हम शुभ अशुभ भाव करते हैं उनसे धर्म नहीं होगा, और तत्व विचार में जो विकल्प होते हैं तत्व साथ हैं उनका ऐसा ऐसा स्वरूप है वो उससे भी धर्म नहीं होगा। और क्या कहते हैं इसमें धोखा नहीं है, हम तुमको धोखे में डाल रहे नहीं, ये परम सत्य है। ये भी सुधरी हुई भाषा है पंडित फूलचंद जी के द्वारा, उनकी मूल भाषा में पढ़ते हैं तो कुछ भी ख्याल में नहीं आता, तो सुधारी तो ढंग से ही क्यों नहीं सुधार दी। तो गुरुदेव श्री का ये एकदम आदेश था कि उसकी मूल टोन नहीं बिगड़नी चाहिए और उसके भाव में किसी तरह से परिवर्तन नहीं आ जाए, इसलिए उन्होंने ऐसी भाषा रखी। अब मैं बनारसीदास जी के बारे में कहता हूं, वो हिंदी साहित्य के सबसे पहले आत्मकथाकार हैं। हिंदी साहित्य में सबसे पहले कोई आत्मकथा लिखी गई, बाद में तो बहुत लिखी, गांधी जी ने लिखी, इनने लिखी, इनने लिखी, है ना। सबसे पहली आत्मकथा बनारसीदास जी ने लिखी पद्य में, उसका नाम क्या है, अर्धकथानक। आत्मकथा नहीं है, अर्धकथानक। ये अर्धकथानक माने क्या, ये कोई बात भी आधा कथानक। तो वो कहते हैं कि उस वक्त जब उन्होंने लिखी थी तब उनकी उम्र 55 वर्ष की थी और वो मानते थे उस समय लोगों की आयु अधिक से अधिक 110 वर्ष की शास्त्रों में बताई थी। अब तो 100 की बताई है, अभी इस समय 400 वर्ष और आगे निकल गए ना। तो वो कहते हैं कि इसमें 55 वर्ष तक की कहानी है, इसलिए ये आधी कथा है। हालांकि मेरे दादा जिए नहीं, उसके बाद 2-4 साल ही जिए होंगे, है ना। इसलिए नाम भले ही अर्ध कथानक है लेकिन बिल्कुल आधी मत समझना, उसका अर्थ अधूरी कहानी है, माने कहानी इस जीवन की भी पूरी नहीं हुई। उन बनारसी दास जी ने जो श्रृंगार रस के बहुत बड़े रसिया कवि थे, और वो जो जमाना था ना, वो जमाना श्रृंगार रस के रसिया कवियों का था, तो उन्होंने एक नवरस पर एक बहुत बढ़िया किताब लिखी थी। जब उन्हें अध्यात्म का रंग लगा तो उन्होंने उस किताब को गोमती नदी में फेंक दिया। यदि वो किताब आज होती तो हिंदी साहित्य में उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता। इनने समय सार का अध्ययन पांडे राजमल जी की उस टीका से किया था, क्योंकि ये वास्तव में संस्कृत नहीं जानते थे, प्राकृत नहीं जानते थे, अभ्रंश नहीं जानते थे, इसे मूल गाथाओं का स्वाध्याय वे डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। वो उसकी संस्कृत टीका जो आत्मख्याति है उसे भी नहीं पढ़ सकते थे, कलशों को भी नहीं पढ़ सकते थे। कलश टीका में जो कलशों का अनुवाद किया उसे पढ़ पढ़ करके वे समय सार के विशेषज्ञ बने थे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि उन्हें वो उस वक्त कैसा जमाना था और आज हमें कितनी सुविधाएं हैं, हमें हिंदी में गुजराती में एक नहीं 10-10 टीकाएं मौजूद हैं, बिल्कुल लेटेस्ट भाषा में हैं, सब जो हम भाषा समझते हैं उस भाषा में उपलब्ध है ना। उस वक्त कुछ उपलब्ध नहीं थे, शास्त्र छपते नहीं थे, शास्त्र लिखित शास्त्र होते थे। एक एक शास्त्र लिखा जाता था तो उतना खर्चा होता था कि जितना आज 10,000 शास्त्र छपाने में नहीं होता। राजा महाराजा और बड़े बड़े सेठिया के अलावा कोई लिखा नहीं सकता था, लिखने वाले जो लोग थे वो अक्षरों की गिनती के हिसाब से लिखते थे क्या, और कहीं कोमा नहीं, कहीं फुल स्टॉप नहीं, आठ अक्षर के बाद एक लाल लेन खींच दे, फिर 16 अक्षर के बाद दो लाल लेने खींच दी, फिर 24 अक्षर के बाद एक लाल लेन खींच दी, फिर दो खींच दी, और इससे गिना 32 अक्षर का एक श्लोक माना जाता था। एक पेज में कितने श्लोक आए उसके हिसाब से गिनती होती थी, उसके हिसाब से उन्हें तनख्वाह मिलती थी। समझ लो कि वो जो लिखने वाला था उसकी पूरी परिवार की आजीविका उसी पर निर्भर थी, कितना खर्चा होता होगा। एक एक प्रति में ये लिखा है कि ये प्रति फलां राजा ने अपने बेटे के पढ़ने के लिए लिखाई, ये प्रति फलां सेठ ने अपनी पत्नी के स्वाध्याय के लिए लिखाई, ये फलां सेठ ने खुद के स्वाध्याय के लिए लिखी। एक एक किताब पर ये लिखा रहता था और उसकी इतनी कीमत थी, वो हरेक को उपलब्ध नहीं थी, उनका पढ़ना आसान नहीं था। अभी आप किस जमाने में आ गए, कंप्यूटर में जरा एक बटन दबाओ तो फटाफट सब निकल आता है, क्यों इंटरनेट पे एक इतनी इतनी सी वो आती है, क्या वो ई बोलते हैं क्या, ई पेज, आई पेज, उसमें कह रहे 4000 किताब, इतना सा हाथ में लिए फिरो डायरी जैसा 4000 शास्त्र, और उस जमाने की आप कल्पना करो। आपने नहीं देखा, हमने देखा, इतने पुराने तो हम नहीं हैं, लेकिन जब हम पढ़ते थे तुम्हारे बराबर थे ना बेटे, तब वो ही शास्त्र शास्त्र की गद्दी पे रखे रहते थे, उनसे ही पढ़ना पड़ता था, ना उनमें कोमा ना उसमें फुलस्टॉप, उन्हें बहुत संभाल के रखना पड़ता था। शाम को सर्दियों के दिनों भयंकर सर्दी पड़ रही हो तो पंडित जी को नहाकर धोती दुपट्टा पहनकर और उसे फिर गद्दी पे बैठकर और लेकर के ऐसा हाथ में रुमाल लेके ऐसा रख के ऐसा पेज रख के पढ़ना पड़ता था। उसको पढ़ना भी बहुत आसान, हमने वो किया है ऐसा सात सवा, तुम्हारी उम्र में सात सवा की ना ऐसी की। उस समय ये नाटक समय साल लिखा गया और वो पांडे राजमल जी की कलस्थिका लिखी गई, उसके आधार पर वो समय सार के इतने बड़े विशेषज्ञ बने कि उनका नाम आज हम कुंद आचार्य के साथ, अमृतकुंद आचार्य के साथ उतने ही सम्मान से लेते हैं। तो ये जो उन्होंने लिखी टीका, देखो उसमें धोखा कुछ नहीं है। अब फिर भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार पुण्यवान जीव के हाथ में चिंतामणि रत्न होता है उससे उसके सब मनोहरत पूरा होता है, वह जीव लोहा तांबा रूपा ऐसी धातु का संग्रह नहीं करता, काय को रखेगा, क्या करना, जब चाहिए चिंतामणि रत्न से मांग ली वो चीज मिल जाएगी, हम क्यों रखते हैं, क्यों हम संग्रह संपत्ति के रूप में, उसे संपत्ति के रूप में कोई चीज रखने की जरूरत ही नहीं है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव के पास शुद्ध स्वरूप अनुभव ऐसा चिंतामणि रत्न है, उसके द्वारा सकल कर्म क्षय होता है। देखो तब बाहर के क्रियाकांड वाले धर्म में वो काय को उलझे, क्या कह रहे, उसके पास क्या चीज है, अपना भगवान आत्मा है और आत्मा को जानने वाली ज्ञान की पर्याय है, वो भी अपनी और अपना आत्मा भी अपना, लंच मात्र भी पराधीनता नहीं है। ऐसा चिंतामणि रत्न जिसके पास है वो मोक्ष जाने के लिए ये बाहर के झंझटों में काय को उलझेगा, ये विकल्प क्यों करेगा। वो कौन सी तीन बातें ऊपर लिखी थी ना, ये क्रियाकांड तो है ही और ये विकल्प कि आत्मा परद्रव से भिन्न है, अजीब से भिन्न है, असर से भिन्न है, इनमें काय को उलझेगा, वो कहता हो गया, पुरानी बात हो गई। अब तो हमने उस आत्मा को जान लिया, कितना सहज और सरल काम है। धर्म तो आज भी बहुत सरल और सहज है भाई साहब, लेकिन हमने अपनी कल्पनाओं से उसे बहुत कठिन बना दिया है। ऐसा हो गया है, सत्तू मनमत्तू कब घोरे कब खाए, धान चट घुटी पट्ट खाई, नहीं आई समझ में कुछ, हमारे बुंदेलखंड की कहावत है, ये जो बुंदेलखंडी बैठे उनकी समझ में आ गई होगी। देखो दो चीजें हैं, सत्तू तो आप जानते हैं ना, खाते हैं ना, जो तैयार रहता है उसमें सब चीजें तैयार, चीनी भी पड़ी रहती है, बस पानी डाला, घोला और खा लो, कितना सरल है। रास्ते में रखते थे पुराने जमाने के लोग सत्तू, बस घोला और खा लिया। और धान माने हमें चावल खाना है, धान माने छिलके सहित चावल, उसको धान बोलते हैं। अब पुराने जमाने में चावल खाना हो तो बाजार में चावल नहीं मिलता था, धान खरीदनी पड़ती थी, वो छिलके सहित हमने अपने घर में देखा है। फिर उसको दलते थे, वो दलने की चक्की अलग होती थी, ये पीसने की चक्की अलग होती है, दलने वाली का पार्ट बहुत पतला होता था। फिर दलते थे, फिर कूटते थे, फिर फटकते थे, फिर धोते थे, कितना है? आज से काम शुरू करें तो 3 दिन बाद नंबर आएगा जब हमें चावल खाने को मिलेंगे। यानी समझिए ना, धान को खाना हो तो 3 दिन से पहले नहीं खा सकते, और सत्तू को 1 सेकंड में खा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते सत्तू मन मत कब घोरेंगे और कब खाएंगे, ऐसे बोलते हैं ये बहुत बड़ा पहाड़ हो। और धान के बारे में चट कूटी पट खाई 1 मिनट में, माने ये जो धर्म आत्मा के अनुभव का है ये तो सत्तू जैसा है। अपना त्रिकाली त्रिभगवान आत्मा यहां है और अपने ज्ञान की पर्याय को झुकाया और दर्शन हो गए, कितना सरल है। और ये बाहर का क्रियाकांड कितना कठिन है, शिखर में शिखर जाना हो यात्रा को, क्यों कितना महीने पहले से विचार बनाना पड़ता है, टिकट कराना पड़ता है, रिजर्वेशन कराना पड़ता, क्यों कितने कितनी झंझटें होती हैं। बोले शिखर जी की यात्रा सरल है कि भगवान आत्मा की यात्रा सरल है, क्यों ये पंच कल्याणक सरल है कि आत्म कल्याण सरल है, बोला लेकिन इस जगत के जीव को वो आत्म कल्याण का कार्य दिखता है कठिन, और ये बाहर के क्रियाकांड के आरंभ के काम दिखते हैं सरल। ये तो हम साल में 5-5 कर लेते हैं, शिखर जी तो हम साल में 4 दफे हुआ है, और तुम्हारे आत्मा का अनुभव तो हमें आज तक नहीं हुआ। फिर क्या करें, तुमने उसे कठिन मान रखा है और इसे सरल मान रखा है, उसकी वास्तविक पोजीशन क्या है। मैं कभी कभी कहता हूं कि 1 कप चाय पीना है कठिन और आत्मा का अनुभव है सरल। जुकेरी क्या बात कर रहे हो, चाय तो हम दिन में 4-4 कप रोजाना पीते हैं, और आत्मा के अनुभव में सारी जिंदगी निकल गई, क्यों अभी कुछ हाथ लगा ही नहीं। जरा विचार करो गंभीरता से, घर में सब सामग्री जुटा रखी है ना, इसलिए आपको चाय पीना आसान दिखता है। अब एक बार आप यहां से दाहोद से बड़ौदा के लिए निकले अपनी कार से, क्यों जी चाय का इंतजाम साथ में रख के ले जाओगे, क्यों ले जाएंगे, क्या जरूरत है, अभी 2 घंटे में तो पहुंचते हैं, और वहां कौन से चाय की कमी है, और रास्ते में कौन से कमी है। जितनी गाड़ी को पेट्रोल पंप नहीं है उससे दूनी दुकानें चाय की हैं, और हमें कोई राग देश तो है नहीं, जहां मिली जैसी मिली जिसकी मिली पी ली। मैंने कहा एक भी त्रागी तो तुम्हें देख रहा हमें, कोई राग देश नहीं है ना, क्यों तो कोई आदमी साथ में चाय लेके नहीं चलता, पेट्रोल तो फुल करा के चलता है टंकी, लेकिन चाय 1 कप भी अपने साथ लेके तो नहीं चलता, क्यों जरूरत ही नहीं है। अभी आपके यहां जाकर के 50 किलोमीटर पर आपकी गाड़ी खराब हो गई, और उसके 4 किलोमीटर इस तरफ और 4 किलोमीटर इस तरफ कोई चाय की दुकान नहीं है, बोलो, और आपके 2 बजे के दिन के चाय पीने का समय हो गया। अब 1 कप चाय पीना कितना कठिन काम है, बोलो, क्यों चाय चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, स्टोव चाहिए, सब कुछ चाहिए और एक माचिस नहीं हुई तो चाय पीना अटक जाएगा। कितनी पराधीनता है आप सोचो, अब एक कप चाय कितनी मुश्किल है। अब आत्मा का ध्यान करना है, क्यों जी? वहीं बैठो आराम से, पद्मासन लगाओ, आंखें बंद करो, क्यों? तस्वीरे खुदा तेरे हृदय के आईने में है, जब चाही गर्दन झुकाई देख ली, क्यों? बोलो सरल कौन काम है? आत्मा का अनुभव सरल है कि एक कप चाय पीना सरल है? क्योंकि वो पराधीन क्रिया है। और तुलसीदास जी भी लिख गए कि पराधीन सपन हूं सुख नाही, क्यों? और आत्मा का अनुभव क्यों है सरल है? क्योंकि वो स्वाधीन क्रिया है, इसी किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, है? दूसरे बीच में विघ्न ना करें इसकी जरूरत है। अरे और जाने दो, दूसरे ज्ञान के गे नहीं बने इसकी जरूरत है, वे ज्ञान के गे बनेंगे तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। उसकी नेगेटिव कीमत है, पॉजिटिव नहीं है। जब हम सबसे पहले सोनगढ़ गए सन 58 में, 58 में 20 दिन वहां रहे थे, तो पूज गुरुदेव श्री के प्रवचन चलते थे, रामजी भाई की क्लास चलती थी, खेमजी भाई की क्लास चलती थी, तो गुरुदेव के प्रवचन में जो रहस्य निकलते थे, उस वक्त मैं अशोकनगर में रहता था, मध्य प्रदेश में अशोकनगर है ना, गुना जिले में, तो वहां भी मैं रोजाना प्रवचन करता था, तो ऐसा विकल्प आता था कि ये बात मैं जाकर अपनी सभा में अपने श्रोताओं को समझाऊंगा, और ऐसे विकल्प में 2-5 मिनट निकल जाते थे, जब तक जो गुरुदेव ने बोले वो गायब हो जाता था। मुझे याद है मैंने पत्र लिखा था वहां से अपने उन लोगों को कि तुम लोग वहां तो मुझे परेशान करते ही हो, मैं इतनी दूर आ गया यहां भी तुम लोग परेशान करते हो, कि तुम्हारे को समझाने का विकल्प आता है तो मेरे समझने का अवसर चूक जाता है। अब समझ बोले समझ लो, जो चीज हमें करनी है, जो जाननी है, यदि पर का जानना उस वक्त होगा तो वो जानने से रह जाएगी। तो पर का सहयोग क्या चाहिए बोलो? तू सहयोग नहीं करे ये सहयोग चाहिए, नहीं आ रहे? एक आदमी को 15 दिन से नींद नहीं आई थी, बिल्कुल नींद नहीं आती थी, पागल जैसा हो गया था, अस्पताल में भर्ती किया, डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की लेकिन नींद नहीं आती थी। अब बड़ी मुश्किल से किसी प्रयास से वो सोया, वो नींद आ गई, तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इसे जगाना मत, जब तक सोए सोने देना, कि दवाई देंगे, दवाई देने को तो जमाना नहीं पड़ेगा ना, कि नहीं, आज तक दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी जिसे जगा के खिलाया जाए, समझे? मैंने नींद से बड़ी दवा दुनिया में कोई नहीं है, जगाना मत, सोने देना, जितना सोए। उसकी बीमारी की खबर सुनकर, ये बंबई में था अस्पताल में, दिल्ली से उसका दोस्त आया, सुबह की फ्लाइट से आया और शाम की फ्लाइट का टिकट वापस लाया साथ में, और वो अस्पताल में पहुंचा और कहा कि मैं उसका दोस्त हूं, बहुत नजदीक का फास्ट फ्रेंड हूं, मुझे उससे मिलना है। तो उन्होंने कहा मुश्किल से सोए हैं, डॉक्टरों की आज्ञा है कि उन्हें जगाना मत, तो मैं कह रहा हूं ना कि जगा दो, साहब हम तो नहीं जगा सकते, तुम समझते नहीं हो मैं कौन हूं, हम नहीं समझते होंगे, कुंद कुंद ने भी बहुत समझाया मैं कौन हूं, लेकिन नहीं समझे तो नहीं समझे। आप जो कुछ भी हो, कोई भी हो, लेकिन हम उन्हें जगाएंगे नहीं, क्योंकि डॉक्टरों की आज्ञा है कि जगाना नहीं, क्यों? मुझे उनसे बात करनी है कि आप हमें बता दीजिए, ख्याल में आई ना, कि आप रुक जाइए, जब उनकी नींद खुलेगी तब आप बात कर लेना। कि नहीं, मैं तो शाम का टिकट वापस लेके आया, मैं रुक नहीं सकता, बहुत काम है मुझे। तो आप हमें बता दीजिए, हम कह देंगे उनसे कि नहीं नहीं कुछ बातें ऐसी होती जो तुमको नहीं बताई जा सकती। कि साहब तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप हमें बता दो, हम गुप्त रखेंगे, उनको ही कहेंगे और किसी को कुछ नहीं कहेंगे। कि मुझे उनसे ये पूछना है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, मैं ये पूछने ही आया हूं अजित भाई कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं। तो उनने कहा कि भाई साहब हम बता दें आप क्या हेल्प कर सकते हैं। उन्हें जगाए नहीं, इससे बड़ी हेल्प इस वक्त दुनिया में कोई दूसरी नहीं है, समझे। जब उसको मालूम पड़ेगा कि मैं आया था और तुमने उसे जगाया नहीं, तो वो तुम्हारी कितनी खबर लेगा, कैसी लेगा, तुम्हें पता नहीं है। आखिर मैं हूं किस चिड़िया का नाम, तो जो कुछ भी हो क्यों हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो मुझे अपने आत्मा का अनुभव करना है और आप फरमा रहे हैं कि हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो हाथ जोड़ के मैं कहता हूं भैया कि आप मेरी कोई हेल्प नहीं करना, यही सबसे बड़ी हेल्प होगी। मैं तो सच बोलता हूं, बनारसी दास के साथ ऐसा हुआ था, जब अंत में उनका गला रुंध गया, वे अपने ध्यान में मगन थे, अपनी आत्मा की बात सोच रहे थे, सारी जिंदगी जो उन्होंने सोची थी, और लोग चारों तरफ आकर के बैठ गए थे। तो एक कह रहे थे कि देखो इतनी तकलीफ है, गला रुंध गया है, इनके प्राण नहीं निकल रहे हैं, ये बाल बच्चों में प्राण पर रखे हैं, धन में प्राण रखे हैं, नवानु काय में प्राण रखे हैं, ऐसा ऐसी चर्चा कर रहे थे। अब अनासी दास सुन रहे, बोल तो सकते नहीं। तो उनने एक दोहा लिखा, मरते मरते वक्त की हालत में, ज्ञान कुतक का हाथ मार अरि मोहना, और चले बनारसी दास फेर नहीं आना। अरे मैंने तो ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से मोह रूपी शत्रु को काट मारा है, उसे तोड़ के अब हम जा रहे हैं, हमें संसार में द्वारा नहीं आना है। ये सारे जगत वाले क्या करेंगे, जिन्हें खुद कुछ पता नहीं है, ये मरते वक्त हमें समझाएंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, बैठ के रोएंगे और हमें और रुलाएंगे, और न मालूम कैसी कैसी बातें करेंगे। मैं तो भरी सभा में कई दफे अपील कर चुका हूं, यहां भी करता हूं, कि जब मेरा मरने का समय आए तो कोई मुझे समझाना नहीं, घबराना नहीं, कोई नवोकारमंद भक्तांबर सुनाना नहीं। क्या कह रहे, कैसा पंडित है जी, समाज में तो लोगों को सहयोग करना चाहिए, सुनाना चाहिए, ये कहना चाहिए, सुना देना। अरे मैंने सारी जिंदगी 8 वर्ष की उम्र से आज 76 वर्ष का हो गया, यही किया है, अब फिर भी मुझे वो समझने की, तुमसे समझने की जरूरत पड़ेगी। अरे मैंने जिंदगी भर समझाने का धंधा किया है, मैंने जो किया है मैं अपने उसमें मस्त रहूंगा, और तुम जो भी बोलोगे मुझे डिस्टर्बेंस होगा, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। दूसरों के द्वारा कराई समाधि से आज तक किसी को मोक्ष नहीं हुआ, क्यों? पासनाथ को किसने कराई थी, कमठ ने, किसने कराई थी समाधि, के धर्मेंद्र ने, किसने कराई थी भाई? जिसने जीवन भर आत्मा की आराधना की होगी उसकी ही समाधि होने वाली है। ये ऐसी चीज नहीं है कि जिंदगी भर पाप पुण्य में लगे रहो और अंत समय में तुम मेरे को समझा देना और मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक सच्ची घटना सुनाता हूं, 2 मिनट की है, तुम्हारी इंदौर की है, इंदौर वाले बैठे कोई हादसा ना, हाँ बोले बैठे हैं, इंदौर की घटना है, नाम नहीं बताऊंगा, तुम तो समझ जाओगे मैं जानता हूं। मैं इंदौर में रहता था आज से 46 साल पहले। रात में एक भाई मेरे घर आए और उन्होंने कहा पंडित जल्दी चलो, जल्दी चलो, क्या कि अम्मा जी की तबीयत बहुत खराब है। तो मैंने कहा कि अम्मा जी की तबीयत खराब है तो मैं क्या करूंगा, मुखर्जी को बुलाओ, डॉक्टर मुखर्जी उस वक्त बहुत प्रसिद्ध थे, मुखर्जी को बुलाओ। बोले बेटो अभी आगे गए हैं और कह गए कि अब दवा का काम नहीं, अब दुआ का काम है ना, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब बचेंगे नहीं, वो कह गए कि सुबह के पहले पहले चल देंगे। तो मैंने कहा आप मेरे पास आए हो बचाने के लिए मुखर्जी के पास, मारने के लिए पंडित को? तुमको एक किसने बताया कि मैं मारने का काम करता हूं? तो बोले आप मजाक नहीं कर रहा हूं। जब वो उनका बोलना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया, क्यों गला रुंध गया, बेहोश हो गए, समझते नहीं हैं, अब मेरे से कहते चलो मैं तुम्हें समझाऊं, जो समझना। अब मैं उन्हें क्या समझाऊंगा, मेरे पास तो ऐसा माल है कि मैं कमर कस के बैठूं समझाने और सुनने वाले कमर कस के बैठे समझने, तो बड़ी मुश्किल से कुछ समझा सकता हूं। तो बेहोश आदमी को मैं क्या समझाऊं? बोले नमोकार मंत्री सुना देना, मैं तुम्हें नहीं आता है, मेरा गला इतना अच्छा नहीं है, नमोकार मंत्र तुम भी सुना सकते हो, मैं नहीं जाऊंगा। अरे तुम्हारा घर उस मंदिर के सामने है जहां मैं रोजाना प्रवचन करता हूं। मैं प्रवचन करता था, अब मंदिर का नाम भी नहीं बता सकता क्योंकि आप सामने वाला घर देखोगे तो क्या। और तुम कभी प्रवचन सुनने नहीं आए, तुम्हारी अम्मा नहीं आई, समझे ना? जब समझने लायक थे तब तो आए नहीं, और अब जब समझने की पोजीशन नहीं रही तब मेरे पास आते हो, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो नाराज हो गए और गुस्से में बोले हाँ हम सब जानते हैं। अच्छा क्या जानते हो आप? यदि कोई मुमुक्षु आता तो आप दौड़े दौड़े चले जाते, हम मुमुक्षु नहीं है ना, समझा? इसलिए आप मना कर, सच्ची घटना है, सामने शास्त्र रखा है, उसकी साक्षी में बता रहा हूं मैं आपको। मुमुक्षु होता कोई और वो आता तो आप मना नहीं करते, दौड़े दौड़े चले जाते, और मैं मुमुक्षु नहीं हूं ना, इसलिए आप इतना उपदेश दे रहे हैं मेरे को, जरूरत अम्मा को है उपदेश की और दे रहे मुझे। मैंने कहा बेटा तुम सही कहते हो, यदि कोई मुमुक्षु आता तो मैं जरूर जाता, गारंटी से जाता, समझना, मैं तुम्हारी इस बात को स्वीकार करता हूं। क्यों? ये भी तो तुम समझ लो, जो मेरा रोजाना का श्रोता है, यदि वो बीमार होगा, उसका गला रुंध जाएगा, वो ऐसी हालत में हो जाएगा, तो मैं जाऊंगा तो मेरी शकल देख के उसे आत्मा याद आएगा, इसलिए जाऊंगा। मैं ऐसी उंगली बताऊंगा तो उसकी समझ में आ जाएगा कि एक आत्मा की शरण में जाओ, दुनिया के चक्कर में क्यों पड़ते हो, समझे ना? जिसने जीवन, हम तो जीवन सुधारने वाले लोग हैं, जिसका जीवन सुधरा है उसका मन सुधरेगा, जीवन नहीं सुधरा है मरते समय हम बस अगला नवो का मन सुन लेंगे तो कल्याण हो जाएगा, इस धोखे में मत रहना। मैं तो अपने उपयोग को उस समय समस्त परद्रव्यों से हटाकर आत्मा में लगाने की कोशिश कर रहा हूंगा, और तुम किसी ना किसी परद्रव्य में लगाने की बात करोगे, मुझे मत समझाना, मुझे नहीं समझना है, जो समझाना अभी समझा दो। क्यों? आत्मा का अनुभव पराधीन नहीं है, उसे दूसरे की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं इसमें नाथ बनासीदास जी और पांडे राजमल जी कलश के आधार पर, कि हम अपने अधीन, इसमें कोई रंजमातमी पराधीनता नहीं है। बोल रहा था मैं आपको, तस्वीरे खुदा हृदय के आईने में है, जब चाही गर्दन झुकाई देख ली, कितना स्वाधीन काम है। तो एक भाई बोले तुमने तो कह दिया कि गर्दन झुकाई देख ली, गर्दन झुकाना इतना आसान काम है? जब कभी कभी हमारी गर्दन टेढ़ी पड़ी रहती है तो उसमें दर्द हो जाता है, तो जरा सा हिलाओ तो प्राण निकलते हैं, हुआ कभी ऐसा अनुभव? हुआ, ऐसी हिला नहीं सकते, और तुमने कह दी झुका दो, और फिर हम उस देश के वासी हैं, गर्दन कटा सकते हैं पर गर्दन झुका सकते नहीं, और तुमने कह दी गर्दन झुकाई। गर्दन झुकाना इतना आसान काम नहीं है। मैंने कहा भैया ये बात हमारी थोड़ी है, ये तो मुसलमानों की, ये घबराना नहीं। क्यों सी? कि तस्वीर खुदा हृदय के आईने में है, जब चाही गर्दन झुकाई देख ली। अरे गर्दन झुकानी पड़े किसी दूसरे के सामने, और देखने को क्या मिले? खुद तो मिले ही नहीं, खुदा मिले। अरे खुदा भी क्या मिल रहा? खुदा की तस्वीर। इस भाव हमें नहीं पोसाता, अपन तो बनिया है ना, सोचा हमें जिस भाव पोसाएगा तो ही लेंगे कि नहीं लेंगे। क्यों? कि झुकानी पड़े गर्दन, ये इतना बड़ा काम, और देखने को क्या मिले? मैं तो खुद नहीं मिले, खुदा, खुदा भी नहीं, खुदा की तस्वीर, ना आत्मा ना परमात्मा। खुद माने आत्मा, खुदा माने परमात्मा, क्यों? दोनों नहीं मिले, उसकी तस्वीर मिले। हम तस्वीर देखने आए हैं। तो अपनी बात क्या है? अपने आत्मा को देखने के लिए गर्दन झुकाने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारे मंदिरों में जितनी भी मूर्तियां हैं आत्मानुभूति के काल की है ना, ध्यान करती हुई आत्मा का, तो गर्दन झुकी है? नहीं झुकी है? अपनी कोई मूर्ति ऐसी बनी है? क्या ये ध्यान करने वाले ऐसे बैठती, ऐसी होते हैं? ये है मुद्रा हमारी, ये मुद्रा है बोला। क्यों? गर्दन झुकाने की जरूरत नहीं है, और अपने बस ज्ञान की पर्याय को झुकाओ, और किसी दूसरे के सामने नहीं, खुदा के सामने नहीं, परमात्मा के सामने नहीं, अरहंत के सामने नहीं, सिद्ध के सामने नहीं, अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में झुकाओ, खुद में झुकाओ, खुद की ज्ञान पर्याय को। अरे झुकाओ मुकाओ क्या, कि झुकाने की भाषा ही खोटी है। जानना है, ज्ञान से तो जाना जाता है, ज्ञान से झुका थोड़ी जाता है, झुकाया थोड़ी जाता है, ज्ञान को झुकाना मुकाना थोड़ी पड़ता है। अब हमारी भाषा ही झुकने की हमें आती है तो हम क्या करें? क्योंकि जिंदगी भर झुके हैं ना दूसरे के चरणों में, क्या झुके हैं क्या झुकवाने की कोशिश की है? चल दूसरे मेरे चरणों में झुकें या मैं दूसरे के चरणों में झुकूं? क्यों? ऐसा नहीं हो सकता कि ना कोई मेरे चरणों में झुके और ना मैं किसी के चरणों में झुकूं। सब अहिमिंद्र है ना, सर्वासिद्धि से आगे वैजयंत से आए थे, सर्वासिद्धि से नक्की करना। दो दफे सुन लिया मैंने दो बातें, ये जयंत वैजयंत विधान से आए, एक सर्वासिद्धि से आए, जरा देखना रात को। हाँ सर, लेकिन विजय वैजयंत भी सुना था मैंने, अभी जल्दी मत बताओ, देख के बताना, ख्याल में है ना? वहां सर अहिमेंद्र होते हैं ना, अहमेंद्र, अहमेंद्र माने मेरा कोई मालिक नहीं और मैं भी किसी का मालिक नहीं, समझे ना? अपना आत्मा स्वयं में परिपूर्ण है, इसे पर के सहयोग की लंच मात्र आवश्यकता नहीं है। तो कहते तत्व विचार के विकल्पों में उलझने से क्या, ये भी परिग्रह है। और अगली ही गाथा है जिसे मैं आपको सुनाना चाहता हूं, कि क्या लिखा कि देखो तुम आत्मा के लिए तो आत्मा का ही परिग्रह है। देखो को नाम भणिज बहो पर दब्बम मम इमम हवदी दब्बम अपाण मप्रणो परिग्रहंतु निदंबियानंतो आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जान कर पर देव मेरा है बताओ कौन बुद्ध ऐसा कहे। आत्मा का परिग्रह तो आत्मा ही है, कल बताया था परिग्रह का अर्थ, परि समन्ता चारों ओर से निर्विक्षेत्र काल भाव से ग्रहण करना माने जानना, निर्विकल्प होकर उसका नाम परिग्रह है। तो फिर मैंने मेरे तो आत्मा के परिग्रह है, माने मैं तो अपने आत्मा को ही जानता हूं, इसके अलावा मेरा कोई प्रतिबिंब मेरा नहीं है। कहते इतना नक्की हो गया, पक्का हो गया, खूब चिंतन मनन से आगम से युक्ति से, अब ऐसा कौन बुद्धिमान लोग है, पुरुष है, जो ये कहे कि परिद्रव्य मेरा है। किससे कह रहे हैं? एक ऐसा कौन बुद्धिमान है? देखो आचार्य है ना, इसलिए लिखते हैं ऐसा कौन बुद्धिमान है। अपन लिखते तो क्या लिखते, ऐसा कौन मूर्ख है जो ये कहेगा कि परिद्रव्य मेरा है। ये परिद्रव्य मेरा है ऐसा कहने वाला बुद्धिमान है कि मूर्ख? क्यों? क्योंकि तो इतनी बात नक्की हो गई, पक्की हो गई, अरंत भगवान की दिव्य ध्वनि में आई, शास्त्रों में लिखी, गुरुदेव ने बताई, कुंदाचार्य जैसे संतों के मुख से आई, सब जगह हमने सुनी और हमारे हमने भी अनुभव किया, तर्क युक्ति पे कस के देखा। अब इसके बाद कौन आदमी ऐसा कहेगा परिद्रव्य मेरा है? तो कहेगा वो मेरा मूर्ख के बुद्धिमान। तो बुद्धिमान क्यों लिखा? तो कौन बुद्ध ऐसा कहे, कौन मूढ़ ऐसा कहे, क्यों नहीं लिखा? कि बड़े लोग बड़े होते हैं, वे हल्की बात भी करनी हो तो बहुत सभ्यता से करते हैं। कि जो ऐसा कहेगा कि परिद्रव्य मेरा है, उन्हें कौन बुद्धिमान मानेगा? समझे? एक अंधा व्यक्ति बैठा था, रखा था अपनी कटोरा को, तो कोई आए तो उसमें डालता जाए। एक आदमी आया, ए वे अंधे, यहां से एक आदमी तो नहीं गया अभी? तो उन्होंने कहा, जमादार जी अभी तो कोई नहीं गया। फिर दूसरा आया तो उन्होंने कहा, क्यों भाई अंधे, यहां से कोई गया? हां थानेदार साहब, यहां से तो अभी मैंने किसी को नहीं देखा। फिर तीसरा आया तो उसने, क्यों बे सूरदास, यहां से कोई नजर नहीं गया? यहां एसपी साहब, कोई नहीं गया। और फिर आगे आया, क्यों सूरदास जी, यहां से तो कोई आदमी नहीं देखा? के हुजूर मालिक साहब, यहां से कोई नहीं गया। तो अंधे आदमी ने कैसे पहचाना कि पहला जमादार था, दूसरा था चौकीदार था, क्यों तीसरा थानेदार साहब थे, चौथा हुजूर साहब हैं, ये कैसे जाना? समझिए ना, कैसे जाना? तो उसकी भाषा से जाना, समझे ना? वो जमादार क्यों वे अंधे, इसी भाषा में बोलेगा, बात तो एक ही है। अरे क्यों सूरदास जी, क्यों? समझे ना, उसकी भाषा से जाना। तो ऐसे बड़वान लोग वो मूर्ख की बात भी बुद्धिमान की भाषा में कहते हैं। ऐसा कौन बुद्धिमान है जो ये कहेगा कि ये मेरा है? कहना तो ये कहते हैं कि ऐसा कहने वाला महामूर्ख है। का आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जान कर, परिद्रव्य मेरा है बताओ कौन बुद्ध ऐसा कहे। ये तो अपन ने गाथा आपको इसलिए पढ़ दी क्योंकि ये बात कहनी थी, लेकिन अपन को बनारसी दास के वो कलश पढ़ने हैं जिनकी अपन ने इतनी लंबी भूमिका बांधी है। देखो इसलिए कलश में निकाल अनुभव चिंता मणि रतन है। ये नहीं है भैया, अनुभव चिंता मणि रतन जाके ही परगास, सो पुनीत सिद पद लहे दहे चतुर गति बास, दहे चतुर गति बास आसी धर क्रिया न मंडे, नूतन बंध निरोध पूर्व कृत कर्म बिहंड, ताके न गनु विकार न गनु बहु भार न गनु भवे, जाके हृदय माही रतन चिंता मणि अनुभव। एक कुंडलिया है, कुंडलिया जानते हो, घूम के वहीं की वहीं आ जाए, पूरी कुंडली मार के अनुभव चिंता मणि रतन। अब बनारसी दास जी क्या कहते हैं, देखो वहां तो आत्मा की बात थी, लेकिन उन्होंने यहां अनुभव के रूप में देखा उसे, आत्मा का अनुभव। अनुभव चिंता मणि रतन हुआ था, भगवान आत्मा चिंता मणि है, तो वो बनारसी दास उसे कहते हैं अनुभव, उसका अनुभव चिंता मणि है। ये कहां से ले आए, ये वो पांडे राजमल जी में से लाए। क्यों, उन्होंने क्या लिखा था, जब आत्मा का अनुभव आता है तब ये नहीं होती। तो अनुभव आता है ना आत्मा का, आत्मा से आत्मा के अनुभव पे आ गए ना, तो ये उससे चैंते हुए हैं, बस खत्म। पांडे राजमल जी से चैंते मिलेंगे। यदि कोई नई बात बनारसी दास में मिले तो आंख मीच के कलश्री का देखना, वो वहां पर जरूर लिखी होगी। अनुभव चिंता मणि रतन जाके ही परगास, जिसके हृदय में जिसका अनुभव चिंता मणि रतन का प्रकाश जिसके हृदय में हो गया है, सो पुनीत शिव पद लहे, वह पवित्र आदमी मुक्ति पद को प्राप्त करेगा और दहे चतुर गति बास, चार गतियों के आवास को जला देगा, मतलब चार गति के आवास से छूट जाएगा। दहे चतुर्गति दास आस धर क्रियान मन्ने, अभी बहुत मान बात है कि वो कोई क्रिया किसी आशा से नहीं करता। अब चौथे गुण स्थान वाला है, अब क्रियाएं तो उसके जीवन में देखी जाती हैं, शुभ क्रिया भी और अशुभ भी, युद्ध में जाता भी देखा जाता, शादी करते भी देखा जाता, पूजा पाठ विधान पंचकल्याण करते भी देखा जाता है, लेकिन क्या करे, आस धर क्रिया न मंडे, इससे मुझे धर्म होगा, मुक्ति की प्राप्ति होगी, सुख मिलेगा, इस आशा से कोई क्रिया नहीं करता। भूमिका के अनुसार जो होती है सो होती है। नूतन बंध निरोध पूर्व कृत कर्म विहंड है, और नए कर्मों को वो बांधता नहीं है और पुराने कर्मों को वो काटता है। देखो अब वो तीन बातें कही थी ना कलश्टिका में, कौन उसके विकार नहीं होता, उसके माथे पे भार नहीं होता और उसके भव नहीं होते। ताके न गनु विकार, उसके ज्ञान विकार नहीं है, न गनु बहु भार, उसके माथे पे कोई भार नहीं है, और न गनु भव, उसके अब ज्यादा भव नहीं है संसार में रहने के लिए। जाके हृदय मानी रतन चिंतामणि अनुभव, जिसके हृदय में चिंतामणि अनुभव है, अब उसका संसार खत्म हो गया, विकार खत्म हो गया, भव खत्म हो गए, उसके भव का अभाव हो गया है। ये चिंतामणि अनुभव चिंतामणि की ये महिमा है, ये सबसे बड़ा धर्म है। एक और सवैया लिखते हैं, वो देखो, जिनके ही ये मैं सत्य सूरज उद्युत भयो, फैली मती किरण मिथ्यातम नष्ट है, जिनको सुदृष्टि में ना परे चे सम्यतासो प्रीति ममतासो लस्त पुष्ट है, जिनके कटाक्ष में सहज मोक्ष पंत सजे, मन को निरोध जाके तन को न कष्ट है, जिनके कर्म की किलोले है समाधि डोले है योगासन बोले है मस्त है। इसका अर्थ नीचे लिखा है, बहुत शांति से पढ़ना घर पर हो तो, लेकिन मैं अंतिम दो पंक्तियों का अर्थ बताता हूँ, समय हो गया है। जिनके कर्म की कलोलें यह समाधि है, क्या कह रहे कि वो कर्म के उदय में जो भी भाव होते दिखते हैं तुम्हें बाहर से, तो भी वे समाधि में है, ये समझना। बाहर से कर्म के उदय में कुछ क्रियाएं करते दिखें, शुभाशुभ भाव में दिखें, तो भी वे समाधि में ही हैं। देखो, जिनके कर्म की कलोले हैं समाधि, डोले यह योगासन, और वे डोलते हैं ना, योगासन में तो डोलना नहीं चाहिए ना, उनका डोलना भी योगासन है, और बोले यह मस्त हैं, और वे बोल रहे यही उनका मौन है। कैसे रहे वो फिर बोलता हूं, जिनके कर्म को कलोलो यह है समाधि, डोले यह है योगासन, बोले यह है मस्त है। ये अर्थ आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैंने पूरा लिखा है। आठों छंदों का अर्थ गहराई से पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। अब कल अपन अगली गाथा जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, उसका विशेष विस्तार से अर्थ करेंगे।